लेकिन तुमने अरुणिमा को मुझसे दूर कर दिया। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम अरुणिमा के लिए अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने अरुणिमा को मारा, तुमने उसे गाली दी, तुमने उसे बहुत परेशान किया है। तुम गंदे आदमी हो, तुम चले जाओ यहां से। राजा साहब वाला आस्तिक गुस्से में डरे हुए आस्तिक के पास आता है और कहता, अपनी बकवास बंद करो, अरुणिमा इन सब की हकदार थी, इसीलिए मैंने उसे सजा दी थी। लेकिन डरे हुए आस्तिक ने रोते हुए कहा, नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया था, वो निर्दोष थी, तुमने उसके साथ गलत किया है। हमारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें अरुणिमा की कोई गलती नहीं थी, ये सब उस आदमी की गलती थी जिसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की थी। राजा साहब वाले आस्तिक ने कहा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। डरा हुआ आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, आज तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। तुम इस तरह से भाग नहीं सकते हो आस्तिक रायचंद, तुम्हें सच को अपनाना ही पड़ेगा। तुमने अरुणिमा को उस गलती की सजा दी थी जो उसने की ही नहीं थी, तुमने अपने बाप की गलती की सजा अरुणिमा को दी है। तुम कैसे भूल गए हो, अरुणिमा तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तुम बाप बनने वाले हो, कुछ ही समय में अरुणिमा की गोद में तुम्हारे दोनों बच्चे होंगे, और तुम ऐसी हालत में उसे कैसे छोड़ सकते हो। जिस तरीके से तुम अपने बाप से नफरत करते हो, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें उसी तरीके से गाली देंगे जैसे तुम अपने बाप को गाली देते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया है, इसीलिए तुम अपने बाप से नफरत करते हो। उसी तरीके से तुमने भी तो अपने बच्चों की माँ के साथ गलत किया है, तो क्या तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत नहीं करेंगे? वो भी तुमसे नफरत करेंगे, वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो, तुम अपने बाप की तरह ही कमीने हो। राजा साहब वाला आस्तिक उस डरे हुए आस्तिक की बात सुनकर लड़खड़ा गया। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी और वो ना में सिर हिलाते हुए कहता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने बाप की तरह कमीना नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा बाप बनूंगा, मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा, मेरे बच्चे मुझसे नफरत नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि मैंने उनकी माँ को दुख दिया है, तकलीफ दी है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई है, मुझे अरुणिमा से माफ़ी मांगनी होगी, मुझे मेरे बच्चों से माफ़ी मांगनी होगी। अरुणिमा मुझसे नफरत करती है, वो मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काएगी, मेरे बच्चे भी मुझसे नफरत करेंगे। नहीं, मैं अपनी अरुणिमा से प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, उसे मेरे पास आना होगा, मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए राजा साहब वाला आस्तिक दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर कोई घर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक हवा में तैरते हुए बादल थे। आस्तिक उन बादलों में अरुणिमा को देखना चाहता था, अपने बच्चों को देखना चाहता था। वो दूर तक दौड़ता हुआ अरुणिमा को पुकार रहा था, अपने बच्चों को पुकार रहा था, उनसे माफ़ी मांग रहा था। अरुणिमा, अरुणिमा, तुम कहाँ हो? अरुणिमा, मेरे सामने आओ, अरुणिमा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं हमारे बच्चों को देखना चाहता हूँ। आस्तिक तेजी से चिल्लाता हुआ पागलखाने के बेड पर बैठ जाता है और वो दीवारों पर हाथ मारते हुए अरुणिमा को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि वो अभी भी अपने पास अरुणिमा को ढूंढ सकता है। वो जोर जोर से अपने कमरे की दीवारों पर अपने दोनों हाथों को मार रहा था और अरुणिमा को बुला रहा था, अरुणिमा, मेरे बच्चे, मुझे उनसे मिलना है, अरुणिमा, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, अरुणिमा, तुम कहाँ हो? आस्तिक पागलों की तरह चिल्ला रहा था, उसका सिर भारी हो रहा था और वो अपने होश खोने लगा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और अस्पताल के दो स्टाफ अंदर आते हैं। उन्होंने आस्तिक को पकड़ लिया और एक ने आस्तिक के हाथ में इंजेक्शन लगाया, जिससे आस्तिक धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसे वापस बेड पर लेटा दिया गया था, लेकिन आस्तिक बेहोशी की हालत में भी अरुणिमा को बुला रहा था। 3 महीने बाद अरुणिमा को 9वां महीना लग चुका था और वो इस वक्त सक्षम के फार्म हाउस में ही रह रही थी। मिश्री ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया था और शारदा देवी रोज सुबह काम का बोलकर कहीं जाया करती थी। अरुणिमा अब शारदा देवी से ना तो बात करती है और ना ही उनकी तरफ देखती है, लेकिन वो शारदा देवी से खुद को अलग नहीं कर सकती है। भले ही शारदा देवी ने गुजरे दिनों में जो भी क्यों ना किया हो, लेकिन अरुणिमा ये बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने इसकी परवरिश की है। इसीलिए अरुणिमा ने एक फैसला किया था, वो बस अपनी डिलीवरी तक का इंतजार कर रही थी। अरुणिमा सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने आस्तिक के सारे भाई बहन मौजूद थे। प्रणाली जानती थी कि अरुणिमा सक्षम के फार्म हाउस में रह रही है और इस बात से उसे कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि अरुणिमा के पास आस्तिक के बच्चे थे और वो नहीं चाहती थी कि इस हालत में अरुणिमा यहाँ वहाँ थक्के खाए। प्रणाली ने कई बार अरुणिमा के लिए सामान भी भिजाए थे, लेकिन अरुणिमा ने मना कर दिया था, क्योंकि वो प्रणाली से या फिर किसी भी रायचंद भाई या बहन से कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। एक दो बार जाह्नवी अरुणिमा से मिलने आई थी, लेकिन अरुणिमा जाह्नवी से सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर मिली थी।
अरुणिमा इस वक्त पृथ्वी, प्रणाली और कीर्ति को देख रही थी, जो उसके सामने उम्मीद लेकर बैठे हुए थे। अरुणिमा ने एक गहरी सांस छोड़ी और पृथ्वी और प्रणाली को देखकर कहा, आप लोग मुझसे मिलने आए हैं, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ भी ऐसा करने को मत कहिएगा जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। कीर्ति ने रोते हुए कहा, प्लीज़ अरु, भाई पूरे पागल हो गए हैं, वो बस तुम्हारा नाम ले रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, और इतनी पत्थर दिल मत बनो तुम। अरुणिमा एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि पिछले 3 महीने से कभी पृथ्वी, कभी प्रणाली तो कभी कीर्ति अरुणिमा को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक बार जाकर आस्तिक से मिल ले और उसे देख ले, लेकिन अरुणिमा आस्तिक से मिलना ही नहीं चाहती थी। उन सब ने अरुणिमा को आस्तिक की हालत के बारे में भी बताया था, लेकिन उसकी हालत के बारे में सुनकर अरुणिमा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसने तो ये सोचा कि जब कानून और अरुणिमा खुद उसे सजा नहीं दे पाई, तो कुदरत ने आस्तिक को अपने आप ही सजा दे दी है।